लूथर और जर्मन सुधारवाद। विटेनबर्ग में एक भिक्षु के रूप में मार्टिन लूथर भयंकर आध्यात्मिक संकट से गुजर चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह क्रियाकलापों या अनुष्ठानों के द्वारा मोक्ष पाना असंभव है, पर इसे दैवीय कृपा के उपहार से जागृत अंतःकरण की निजी आस्था से प्राप्त किया जा सकता है। यही विश्वास द्वारा पाप मुक्ति का मूल सिद्धांत था। उन्होंने पापों से मुक्ति के लिए माफी नामों, जिनको क्रय करने से यह माना जाता था कि व्यक्ति अर्थात क्रेता पाप मुक्त हो गया है, के विक्रय के खिलाफ अपनी 95 स्थापनाओं द्वारा सार्वजनिक विरोध किया, जिससे जर्मनी में भारी जन उभार हुआ। इस उभार को पिछले धर्म विरोधी आंदोलनों के विपरीत छापे खाने के आविष्कार से काफ़ी मदद मिली। सन 1520 में लूथर ने अपनी 3 लघु पुस्तिकाएं, एक ईसाई मनुष्य की मुक्ति, जर्मन राष्ट्र के सामंत वर्ग के प्रति एक अपील, चर्च की बेबीलोनियाई कैद प्रकाशित की, जिनमें उसने उन मूलभूत सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिन्हें आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद नाम से अभिहित किया गया। पोप द्वारा लूथर के धर्म बहिष्करण 1520 के अगले वर्ष जर्मनी की शाही संसद ने उसकी भर्त्सना की, किंतु फिर भी कुछ स्थानीय नरेशों के समर्थन और भारी राष्ट्रीय जनजागरण की वजह से लूथर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सका। इस जागरण में शहरी मध्यवर्ग के विभिन्न समूहों तथा दस्तकारों की भूमिका सबसे प्रमुख थी। इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंततः 65 शाही नगरों में से 50 प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायी हो गए। सन 1520 से शुरू होने वाले दशक के आरंभिक वर्षों में लघु पुस्तिकाओं तथा जन प्रचार की बाढ़ सी आ गई। जर्मन में सन 1518 में 150, 1520 में 570 और 1524 में 990 पुस्तिकाएं प्रकाशित हुईं। कार्ल स्टेदत या थॉमस मुंतजर जैसे लोगों के नेतृत्व में इस प्रचार का रुख लूथर से भी कहीं अधिक उग्र सुधारवादी होता गया। जर्मनी में विशेषतः उसके दक्षिणी और पश्चिमी भागों में कृषक विद्रोहियों की एक बहुत शक्तिशाली परंपरा थी। इस नए वातावरण में थॉमस मुंतजर के नेतृत्व में केंद्रीय और दक्षिण पश्चिम जर्मनी में सन 1525 का महान कृषक युद्ध इसी परंपरा का चरमोत्कर्ष था, जिसमें कृषि दास प्रथा, सामंती करों, वन प्रथा के उपयोग पर नियंत्रण एवं धर्म करों को समाप्त करने के साथ साथ पादरियों के निर्वाचन की मांग की गई थी। लूथर ने बड़े कठोर शब्दों में किसानों की भर्त्सना की, हत्यारे और चोरी करने वाले किसानों के झुंड के विरुद्ध, और सामंतों से कहा कि वे उन्हें पागल कुत्तों की भांति मार डालें। साथ ही उसने धर्म सुधार की अन्य प्रवृत्तियों की भी कटु आलोचना की। उदाहरण के लिए सामूहिक प्रार्थना की नई व्याख्या को लेकर उसने ज्विंगली से विवाद किया, जो मारबुर्ग विवाद के नाम से विख्यात है, और धर्म सुधार के सामाजिक परिणाम के प्रश्न पर कुछ अन्य उग्र सुधारवादी समूहों जैसे एनाबैप्टिस्तो से झगड़ा किया। लूथरवाद उत्तरोत्तर निम्न वर्गीय शक्तियों की सहानुभूति खोता गया और क्रमशः जर्मन नरेशों पर अधिकाधिक आश्रित होता गया। इन नरेशों ने अंततः कैथोलिक सम्राट चार्ल्स पंचम को ऑक्सबर्ग की धार्मिक संधि 1555 स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस संधि से इन नरेशों को अपनी प्रजा का धर्म चुनने का अधिकार मिल गया। 17वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में धार्मिक संघर्ष फिर से छिड़ गया और साथ ही विभिन्न राजवंशों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं चल पड़ीं। हैब्सबर्ग स्पेन और ऑस्ट्रिया बनाम फ्रांस एवं स्पेन, जिसकी वजह से विनाशकारी 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 हुआ। इस युद्ध से जर्मनी का विकास 200 वर्ष पिछड़ गया। ज्विगली और काल्विन। दक्षिण पश्चिम जर्मनी, जर्मन नगरों या स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार का स्वरूप अलग था। वह कहीं अधिक नगर आधारित तथा मध्य वर्गीय था और उसमें मानवतावादी बौद्धिकतावादी तत्व कहीं अधिक थे। ज्विगली ने अपनी मृत्यु 1531 तक यह आंदोलन ज्यूरिख में और ब्यूकेर ने स्ट्रेसबर्ग में चलाया, पर अंततः इस क्षेत्र में प्रोटेस्टेंटवाद काल्विन के प्रभाव में आ गया। काल्विन मूलतः फ्रांसीसी था, जो जेनेवा में जाकर बस गया था। 16वीं शताब्दी शताब्दी के मध्य में काल्विनवाद प्रोटेस्टेंटवाद के एक प्रमुख एवं शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में उभर रहा था। काल्विन ने लूथर के इस सिद्धांत का समर्थन किया कि पाप मुक्ति दैवी कृपा का परिणाम है। साथ ही उसने दैवीय सर्वज्ञता पर बल देते हुए प्रारब्धवाद से संबंधित अपने मूल सिद्धांत को जन्म दिया। मनोनयन की धारणा ने, जिसके अनुसार ईश्वर ने सब कुछ पूर्व निर्धारित कर रखा है, तमाम दमन के बावजूद आशातीत आत्मविश्वास पैदा किया। काल्विनवाद से निर्वाचित अंग्रेजों के माध्यम से चर्च के प्रशासन की एक विशिष्ट व्यवस्था को प्रतिपादित किया, परंतु कई मौक़ों पर इसने बड़ी असहिष्णुता का परिचय भी दिया। इसी कारण केस्टोलियो की धार्मिक सहिष्णुता की मांग को अस्वीकार कर दिया गया और सन 1542 में महान वैज्ञानिक सर्वेतो को जिंदा जला दिया गया। किंतु कालांतर में इसके मूल्य अपने आप को उदीयमान बुर्जुआ समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते गए। काल्विनवाद फ्रांस में भी फैला, जहाँ अनेक धार्मिक युद्धों के बाद 1598 में नानतेस की आज्ञप्ति को प्रसारित करके पहली बार एक एक संघात्मक राज्य के अंदर औचित्य के आधार पर सहिष्णुता की स्थापना हुई थी। इसने स्पेन के विरुद्ध सफल डच विद्रोह को उकसाया एवं स्कॉटलैंड को भी जीत किया। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजाओं का जो विरोध हुआ, उससे भी काल्विनवाद का संबंध था।